तो ये गजेंद्र के प्रार्थना के अंतिम प्रार्थना में से एक है। और यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि जी विषय नाम है मैं जीना नहीं चाहता, भले इस जीवन में हो या अगले जीवन में हो। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भी शरीर मिल जाएगा वह अज्ञान से आवृत है, और यह अज्ञान का विनाश काल से नहीं होता है। तो इसमें संबंध क्या है? अज्ञान का विनाश काल से नहीं होता, इसका मतलब यह है कि लंबा जीने से ये अज्ञान जाने वाला नहीं है। कालेन विप्लवः। तो हे प्रभु, मैं क्या चाहता हूं आपसे कि आप मुझे इस अज्ञान से मुक्त कर दो, इस भवबंधन से मुक्त कर दो। तो यहाँ पे दो विषय की चर्चा करूंगा, एक शुद्ध भक्ति का क्या चेत की क्या चेतना होती है और क्या विचारधारा होती है शुद्ध भक्ति के आधार पर, और कैसे हम हमारे अभी के कैसे जनसाधारण लोग जो कि भौतिक जगह में होते हैं वो शुद्ध भक्ति की ओर किस तरह से जा सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति का जो स्तर है वह यह है कि हम केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जिस भी पद में क्यों ना हो। तो अभी ये सेवा करने के लिए जो हमें व्यक्त करता है, जो उसमें परिदृष्ट करता है, वह है अज्ञान। अविद्या कर्म संज्ञायां तृतीया शक्ति दृश्यते। पुराण बताया है इस भौतिक जगत में एक अविद्या की शक्ति है, और वह अविद्या जीवात्मा को कर्म बंधन में फंसाती है। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हणि करिष्यन्ति केचन। कुंती महारानी की प्रार्थना बताती है पहला भागवत के पहले स्कंध के आठवें अध्याय के पहले श्लोक में कि इस भौतिक जगत में जीवात्मा दुख भोग रहा है, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां, बहुत क्लेश भोग रहा है। और क्यों भोग रहा है? अविद्या काम कर्म भी। प्रभुपाद जी का फिर बोलते हैं कि ये तीन शब्द जो है मिनिमम वर्ड्स मैक्सिमम विजडम, तीन शब्दों में पूरे भौतिक जगत में के किस तरह जीवात्मा फंसा है वो बता रहे हैं। हम सब अविद्या में हैं, अविद्या के कारण क्या होता है पता नहीं है, असली में सुख कहाँ मिलेगा। इसीलिए हम भौतिक चीजों में, भौतिक आशाओं में, भौतिक आकांक्षाओं में सुख ढूंढते हैं, और उसकी सुख प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? कर्म करते हैं, और कर्म की प्रतिक्रिया हमें क्लेश दिला देती है। तो अविद्या काम कर्म भी। अभी इससे बाहर कैसे निकलना है? वो कहते हैं श्रवण स्मरण आरहणी, कि भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, उनके बारे में स्मरण करते हैं, तो उससे क्या होता है? अविद्या का नाश होता है। करिष्यन्ति केचन, इस भागवत के इस विभाग में कुंती महारानी ये विश्लेषण कर रही है कि हे प्रभु, आप तो दिव्य हो, आप तो मुक्त हो, आप इस बद्ध जगत से क्यों आते हो? तो अलग अलग कारण बता के फिर वो यह आखिरी कारण होती है कि उस समय के लोगों जो असाधु है उनका नाश करने के लिए, जो साधु है उनका उद्धार करने के लिए जो आप आते हो, पर उसके साथ साथ शाश्वत काल के लिए भी आप कुछ योगदान करते हो। क्या योगदान करते हो आप? कि आपकी लीलाएं यहाँ पे करते हो, जिससे कि हम उस लीलाओं के बारे में जान सके और वो लीलाओं का श्रवण स्मरण कर सके। और इस तरह से भगवान के अवतरण से न केवल उस समय के लोगों का कल्याण होता है, पर हर समय के लोगों का कल्याण भी हो सकता है, क्योंकि वो उन सबके लिए श्रवण स्मरण करने का मौका प्रदान करते हैं। तो अभी भक्ति की विधि से जो हमारा अज्ञान है उसका नाश हो सकता है। और गजेंद्र यहाँ पर बोल रहे हैं हे प्रभु कि ये अज्ञान का आप कृपया नाश कर दीजिए। ये मगरमच्छ के नाश करने के कामना नहीं कर रहे, मगरमच्छ से ये छुड़ाने की कामना नहीं कर रहे है। और वो क्या बात है, ये अज्ञान जो है काल के प्रवाह से इसका नाश नहीं होता। वास्तव में काल से सब चीजों का नाश होता है। हमारा शरीर नौजवान होता है तो फिर धीरे धीरे जैसे काल जाता है तो हम कमजोर होने लगते हैं। कोई इमारत हम बनाते हैं पहले तो बहुत मजबूत होती है, कुछ समय के बाद वो ढीली पड़ जाती है, वो उसमें कुछ कमजोरी आने लगती है। कुछ वृक्ष बड़ा ही विशाल और महाकाया लगता है, पर जैसे समय बदल जाता है तो क्या होता है, वृक्ष गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं वो वास्तव में काल के प्रवाह से बचते नहीं है, उनका भी वो एक समय तक रहने वाले फिल्म का भी नाश नहीं होता है। जब मैं न्यूयॉर्क में गया था तो वहां पे ट्विन टावर्स जहाँ पे था, जो आतंकवादियों के आक्रमण में के कारण गिर गया था, वो उसके उस इलाके से कार्यक्रम की जा रहा था मैं, तभी मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, लोगों को लोगों से बात कर रहा था उसके बारे में। तो ये जो ट्विन टावर्स गिर गया तो केवल वो एक इमारत नहीं है, जो ट्विन टावर्स था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था जो न्यूयॉर्क में, वो वास्तव में अमेरिका के प्रगति का एक प्रतीक था। वो एक अमेरिका के, इट वाज द सिंबल ऑफ अमेरिकास प्रोग्रेस एंड सेफ्टी, ऑफ अमेरिकास सेफ्टी एंड प्रॉस्पेरिटी, कि हम कैसे सुरक्षित है और हम कैसे संपन्न है, उसका वो प्रतीक था। और वो केवल अमेरिका में नहीं था, उस तरह अमेरिका के न्यूयॉर्क जो ट्रेड सेंटर था उसको आधार लेकर, उससे प्रेरणा लेकर विश्व भर में ट्रेड सेंटर वैसे ही बनाए। दुबई में भी एक वैसे ही ट्रेड सेंटर है, यूएई में भी अलग अलग जगह ऐसे ही ट्रेड सेंटर, शारजाह में भी वैसे ही है। तो थोड़ा रचना अलग होती है, पर वो भाव एक है, ऊंची मंजिल जहाँ पे जो वाणिज्य ट्रेड का काम हो रहा है। तो अभी वो इतनी ऊंची और शानदार इमारत जब देखता है कोई व्यक्ति, तो उसको लगता है हाँ, हमारी संस्कृति, हम कितने विशाल, हम कितने प्रगतिशील हैं, हम कितने शक्तिशाली है। और जब वो कुछ ही घंटों में गिर गया तो क्या हो गया, ये जगह, ये द बबल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी वाज बर्स्ट, जो सक्षमता प्रगति का जो एक फुगा था वो फट गया, फूट गया। उसके कारण लोगों में बहुत बहुत चिंता होने लगी, बहुत भय होने लगे। तो इट वाज लाइक अ परमानेंट स्कार ऑन द अमेरिकन साइकी, जो अमेरिका के मन पर वो एक हमेशा का एक धब्बा, भयावह धब्बा पड़ गया। तो यहाँ पे मैं उदाहरण तो दे रहा हूँ कि इस दुनिया में हमें बहुत कुछ बहुत स्थायी लग सकता है, पर तो कुछ भी स्थायी नहीं है। और जब ये पता चलता है तो फिर हमें भय होने लगता है। तो काल बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि काल ये भगवान का ही रूप है, कालोस्मी लोक क्षय प्रबुद्ध हो। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं काल के रूप में आता हूँ और सब लोगों का नाश करता हूँ। पर वही जो काल है वह हमारी इच्छाओं का, हमारी आसक्तियों का, हमारे अज्ञान का नाश नहीं कर सकता। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः, बताते हैं प्रसंग जो आसक्ति जो है उसका जो पाश वो कैसे है, अजरम। जरा मतलब क्या, बुढ़ापा। तो अजरम मतलब जो बूढ़ा नहीं होता है, जो आसक्ति है वो काल के प्रभाव से कम नहीं होती है। उल्टे अगर कोई व्यक्ति को बुरा आदत, बुरी आदत लग गई है तो जितना वो बुरी आदत ज्यादा समय तक रहता है वो उल्टी और शक्तिशाली हो जाती है। तो जो हमारी आसक्तियां है, इच्छाएं हैं, वासनाएं, वो काल से उनका विनाश नहीं होता है, काल से उल्टा उनका बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति और फंस जाता है। तो यह जो अज्ञान है वह ऐसी चीज है कि जो चीज सब चीजों का नाश करती है वो अज्ञान का नाश नहीं कर सकती। जो काल के प्रवाह से अज्ञान का नाश होना चाहिए पर अज्ञान का नाश नहीं होता, मतलब काल के प्रवाह सबका नाश होता है पर अज्ञान का नाश नहीं होता है। अभी एक तरह से कोई कहेगा कि काल का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है हमारी इच्छाओं पे, नहीं ऐसे नहीं है। जैसे अभी हमारे वर्णाश्रम भी चार वर्ण थे, चार आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो इसमें भी समझा गया है कि जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है तो व्यक्ति को और अनासक्त होकर फिर वैराग्य की ओर बढ़ना है, तो वानप्रस्थ या संन्यास इसकी ओर बढ़ना है। और इसमें एक बात यह है कि जब व्यक्ति जवान होता है तभी उसमें इच्छाएं काफी होंगी। तो इसीलिए प्राचीन समय में भी जब वैदिक संस्कृति थी तो जो लोग ब्रह्मचारी आजीवन रहते थे वो कम ही होते थे, अधिकांश लोग ब्रह्मचारी से गृहस्थ जीवन में आते, और फिर वहां से वानप्रस्थ और संन्यास। अभी ये जो श्रृंखला है, क्या इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, व्यक्ति का उम्र बढ़ जाता है तो उससे इच्छाएं कम हो जाती हैं? एक तरह से हाँ, क्या होता है कि जब हम जवान होते हैं तो बहुत इच्छाएं होती है, बहुत कुछ करना होता है, और तभी ऐसे लगता है कि अब क्योंकि जवान शरीर भी शक्तिशाली है, ऐसे लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं दुनिया को जीत सकता हूँ। और फिर जैसे हम जीवन में जीते रहते हैं तो जैसे जीवन का अनुभव प्रायोगिक रूप से होता है हमको, तब कम से समझ आता है कि जीवन बहुत संघर्ष है, और न केवल बहुत संघर्ष है, संघर्ष करके जब प्राप्त भी होता है वो इतना कुछ बड़ा चीज नहीं है। और एक तरह से अंदर से ही साक्षात्कार आता है कि संघर्ष बहुत करना पड़ता है, कि जो प्राप्त होता है उससे भी बहुत संतुष्टि कुछ मिलती नहीं है। और तीसरा क्या होता है कि शरीर की क्षमता कम हो जाती है, न केवल भोग करने की क्षमता, पर भोग करने के लिए जो पहले मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो इन तीन चीजों के कारण, अनुभव के कारण, साक्षात्कार के कारण और शरीर के कमजोर शरीर के राह के कारण, जो वैराग्य की ओर जाना वो वृद्ध थोड़ा हम जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो तभी और आसान होता है, फिर भी ये अपने आप नहीं होता है। भले ही शरीर की शक्ति कम हो जाएगी, वो इच्छाएं अपने आप कम नहीं होगी, इच्छा को कम करने का फैसला हमें करना पड़ेगा। जीर्यतो वा न जीर्यते, ताम तृष्णां दुःख निवहां शर्म कामो द्रुतं त्यजेत। महाराज जयाति भागवत के 9वें स्कंद में साक्षात्कार बताते हैं, और बताते हैं कि जीर्यतो वा न जीर्यते, कि शरीर जीर्ण हो जाता है और जो हमारी इच्छाएं हैं, वासना है, वो जीर्ण नहीं होती। ताम तृष्णां दुःख निवहां, ये तृष्णाएं जब तक रहती है हमें, क्या हमें दुख ही मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति शराबी बन गया है तो कुछ समय तक शराब पीने में कुछ मजा आता है, पर बाद में वो आसक्ति बन जाती है, एडिक्शन बन जाता है, और फिर जब भी वो सोचता है छोड़ना है, पर जब भी वो इच्छा आती है तो क्या होता है, एक वेदना होती है, एक पीड़ा होती है। ताम तृष्णा दुख निवहां, तभी हम समझ जाते हैं कि ये तृष्णा है ये सुख नहीं दे रही, ये दुख दे रही। तो फिर शर्म कामो द्रुतं त्यजेत, तो अभी बड़े प्रयास से इसी वक्त दयादि महाराज कहते हैं कि मैं इसका त्याग कर दूंगा। तो यहाँ पे भाव क्या है कि ये अपने आप, जैसे काल के आधा कालावधि के काल के चले जाने से जो वैराग्य नहीं आने वाला है, अज्ञान नहीं आने वाला है। और आजकल का तो समाज जो है वह तो शोषण में बड़ा ही निपुण, और क्या है कि भारत या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है इनकी तुलना में पाश्चात्य देशों में जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितने समय तक जीते हैं, वो भी कुछ साल पहले देखेंगे तो काफी बढ़ गए, साधारण लोग 70, 80, 90, 100 साल तक जीते हैं। तो अभी जब ये लोग जीते हैं तो अभी एक बड़ा इंडस्ट्री बन गया है जो सिर्फ ये जो 50 अबाव है, 50 के ऊपर है, उनको टारगेट करता है कि इंडस्ट्री क्या है। जयद्वज महाराज एक उन्होंने बैकअप वर्ल्ड में एक लेक्चर लिखा है, एक आर्टिकल था, उसमें लिखा था कि जब वो 50 साल के बन गए तो ये जो खास करके एडवर्टाइजिंग कंपनी वगैरह होते हैं वो उनके पास सबका डेटा होता है, आजकल गूगल से गूगल के द्वारा सबका डेटा सबके पास है। तो बराबर जिस दिन उनका 50th बर्थडे था, उनको एक बड़ा पैकेज आ गया, और क्या मेल, वो जो मेल पैकेज था कि लाइफ इज नेवर एज गुड एज इट इज एट 50, कि 50 की उम्र में जितना जिंदगी अच्छा होते उतने कभी नहीं होते। क्यों? वो भाव था कि कि जब आप 50 के हो गए, तब जब जवान होते हैं तो आपको जिम्मेदारी होते हैं, आप जब मिडिल एज में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां हो गई, अभी आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो उनका अपना जीवन चालू हो गया है, नाउ यू आर फ्री टू लिव योर ओन लाइफ, अभी तुम खुद का जीवन जी सकते हो। जब जवान थे पहले तब अपना करियर बनाना था, तो बाद में परिवार का संभालना, अभी कोई जिम्मेदारी, अभी खुद तुम खुद का जीवन जियो, और फिर अगर थोड़ी बहुत समस्या आए तो हमें आपका हल करनी है। अगर आपका पेट काम नहीं करता है तो वी हैव डाइजेशन रेमेडी, अगर आपके आंखों से दिख नहीं रहा है तो वी हैव आई रेमेडी, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो ईयर रेमेडी। तो जयदत भारत लिखते हैं, My dear friend, what you need is illusion remedy. अरे मित्र, तुमको क्या चाहिए? मोह का हल चाहिए। कैसे कम सुनना, कम नहीं सुनाई दे रहा तो हाँ कुछ प्रक्रिया यूज इस्तेमाल कर सकते हैं सुनने के लिए, कम दिखता है तो हम चश्मा इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये विचारधारा कि इसी में मुझे सुख मिल जाएगा, तो ये जो आजकल की जो भौतिकवादी संस्कृति है वो अभी देखा है कि कोई कई लोग जो अच्छी नौकरी करके 50-60 के साल तक आ गए हैं तो उनके पास पैसा है और फिर उनको बहुत ही अच्छी तरह से टारगेट करते हैं। यहाँ तक कि पूरा अभी इंटरनेट पे जैसे जो जवान लड़के लड़कियां होते हैं डेटिंग करते हैं एक दूसरे से, वो प्रेम का संबंध जो के आगे रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं, तो इंटरनेट पे कई ऐसे डेटिंग साइट्स हैं दैट ओनली फॉर पीपल अबाउट 50 जो 50 साल के ऊपर हो गए हैं, और पाश्चात्य देशों में क्या होता है, अधिकांश लोग जो होते हैं उनका विवाह टिकता नहीं जा सकता, तो अधिकांश लोग जो 50 तक पहुंच गए हैं तो वो 2-3 विवाह करके डिवोर्स भी कर चुके हैं, तो अधिकांश लोग अकेले ही होते हैं। अगर वो अकेले नहीं भी है तो वो अकेले होना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे जब तक बड़े नहीं होते हैं तब तक हम साथ में विवाह में रहेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे वो चलेंगे तो हम भी अलग हो जाएंगे। तो कभी तो इस तरह से लोगों को मोह से निकलने का मौका ही नहीं दिया। शंकराचार्य कहते हैं बालावस्था क्रीड़ा सक्तम, तरुणावस्था तरुणी रक्तम, वृद्धावस्था चिंता मक्तम। पर कलियुग का ऐसा विकृत भाव है कि वृद्धावस्था भी तरुणी मग्नम है बुढ़े अवस्था में भी लोग ऐसे ही आसक्ति में फंसे रहते हैं, और अगर फंसे रहते हैं उनको फंसाया जाता है, और इतना ही नहीं कई ऐसे ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में देखा है कई ऐसे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं दे आर ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स, ऐसे जिमनेशियम होते हैं केवल सीनियर सिटीजन जो 50 के ऊपर होंगे, तो वहां पे वो गोल्फ खेलते हैं, वहां पे टेबल टेनिस खेलते हैं, अलग अलग चीजें खेलते हैं। अभी खेलना बुरा नहीं है पर उसी में पूरा मन लगा देना तो क्या हो रहा है, ये वृद्धावस्था क्रीड़ामग्न बालावस्था क्रीड़ामग्न, ये वृद्धावस्था भी क्रीड़ामग्न हो गया है। तो इस तरह से लोग जो है मोह में फंसे रहते हैं। तो जो यहां बताया गया है कालीन विप्लव, काल के प्रभाव से जो अज्ञान है उसका नाश नहीं होता, वो अज्ञान के नाश, और आजकल के समाज में तो आजकल की संस्कृति में तो होता ही नहीं है, उसके लिए व्यक्ति को खुद दृढ़ संकल्प से फैसला करना चाहिए, बस हो गया, अभी मैं जितना किया है कर लिया है, अभी मुझे इस अज्ञान का नाश करना है, मुझे दिव्य प्रगति करनी है, मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है। जरूर इसे शरीर वृद्ध होने लगता है तो जो वैराग्य की ओर बढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि शरीर में इसमें होता है शरीर में क्षमता कम हो गई है, थोड़ा अनुभव भी आ गया है, साक्षात्कार हो गया, संघर्ष भी हुआ है, पर फिर भी इन ओल्ड एज रिनंसिएशन इज इजियर बट इट इज नेवर ऑटोमेटिक, कि वैराग्य और आसानी से आएगा पर वैराग्य अपने आप नहीं आने वाला है, उसके लिए हमें खुद चुनाव करना पड़ेगा। तो वैराग्य अगर कभी अपने आप आ भी गया तो वो कुछ समय तक रहेगा, वैराग्य का भाव रहेगा पर बाद में पुनः आसक्ति जागृत हो जाएगी, तो वो आसक्ति से युद्ध हमें करना ही चाहिए, उसके बिना हम छूटते नहीं है। तो यहाँ पे तो ये बता रहे हैं गजेंद्र कि अभी लंबे जीवन का फायदा क्या है, कहते हैं कि अगर अभी मैं इस मगरमच्छ को मुझे पकड़ लिया है आप मुझे इसे छुड़ा देंगे तो उसके बाद में पूरा पुनः मेरे बहुत ही जीव में चला जाऊंगा, तो उससे मुझे क्या मुक्ति मिलने, क्या फायदा होने वाला, पुनः मोह में चला जाऊंगा। ज्यादा काल जीने से ये जरूरी नहीं है कि हमारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। ये होता है अगर हम अधिक काल भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है, पर वो शुद्धिकरण काल के प्रवाह से नहीं हो रहा है, वह वास्तव में किससे हो रहा है, वह हमारे भक्ति के अनुशीलन से हो रहा है। और भक्ति का अनुशीलन नहीं करते हैं हम तो फिर हमारा शुद्धिकरण नहीं होता है। तो इसलिए भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जब मैं अमेरिका में था, अमेरिका में हमारी इस्कॉन संस्था है, पहले अमेरिका में चालू हुई थी, और प्रभुपाद जी के अधिकांश शिष्य जो थे अमेरिका से थे, और उनमें से कई ऐसे शिष्य हैं जो महान भक्त बन गए हैं और सारे विश्व भर में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, पर उसमें से कई ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वह तभी तो प्रभुपाद जी के प्रेरणा से भक्ति में आ गए, अतः भक्ति की बदले प्रभुपाद जी चले गए, उनकी प्रेरणा भी चली गई, और इतने भक्ति नहीं करते। तो तभी अभी वो काफी काफी में से बहुत नम्र भी है, और वो अभी दूसरी पीढ़ी में जो भक्त आए हैं वो कभी बड़े नम्रता से बताते हैं कि वास्तव में हमसे ज्यादा तुम समर्पित हो, तुम डेडिकेटेड हो। अभी हमें नहीं समझना चाहिए कि हम ज्यादा समर्पित है, पर भाव क्या है वहां पे कि वो उनको इतना साक्षात्कार है, वो समझ वह ये नहीं कहते हैं कि मैं वरिष्ठ हूँ इसे तुम्हें आदर करना चाहिए। हाँ जरूर वरिष्ठ है, हमें उनका आदर करना चाहिए, पर भक्ति में प्रगति जो होती है वह केवल काल से नहीं होती है, वह हम कितना गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं उससे होती है। शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई आध्यात्मिक प्रगति करने में एकाग्र से लग जाता है तो ऐसे व्यक्ति क्या कह सकते, वृद्धत्वम वयसा अभिनाम। अभी वृद्धि और वृद्धत्व इन दोनों का जो मूल है एक ही है, तीन शब्द है, वृद्धि समृद्धि और वृद्धत्व। वृद्धि मतलब क्या, बड़ा होना, एकदम मात्रा में बड़ा होना, किसी ये मंदिर की वृद्धि हुई है, ये शहर की वृद्धि हुई है, शहर पहले इतना ही था इतना बढ़ गया है, तो वृद्धि मतलब मात्रा में बड़ा होना। समृद्धि मतलब धन संपत्ति में बड़ा होना या ऐश्वर्य में बड़ा होना, या समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी। अभी वृद्धत्व मतलब उम्र में बड़ा होना। ये तीनों के जो मूल है वो एक ही है। तो वैदिक संस्कृति में बताया गया है कि जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो वास्तव में वो समृद्ध होता है, वो ज्ञान से समृद्ध होता है, वो साक्षात्कार से समृद्ध होता है, और ऐसे व्यक्ति जो है वह वास्तव में समाज के लिए बहुत मौल्यवान है। पर वो कब मौल्यवान है, वो तब मौल्यवान है जब समाज ज्ञान और साक्षात्कार का मौल्य करता है। जब अगर समाज भौतिकवादी है तो फिर वो सिर्फ भोग का मौल्य, भोग को मौल्य देता है, और भोग की दृष्टि देखकर जो वृद्ध लोग हैं वो तो भोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी क्या उनसे क्या जान सकते हैं, कुछ नहीं जान सकते। तो इसीलिए जितनी संस्कृति भौतिकवादी बन जाती है उतने वृद्ध लोगों को समाज के दृष्टि से दूर किया जाता है, तो घर में रखने जाओगे कुछ ओल्ड एज होम्स में रख देते हैं। पर जब समाज की संस्कृति पर आधारित है, समाज किसी आध्यात्मिक बुद्धि पर आधारित है, आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, तो वृद्ध लोगों को जो होता है वह आदर दिया जाता है और उनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और आपको ये जरूरी है कि उन्होंने भी ज्ञान अर्जित किया हो, अनुभव अर्जित किया हो, पर यह विचारधारा जो है भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद में अलग होते हैं, क्योंकि भौतिक दृष्टि से तो ह्रास होने वाला है। भौतिक दृष्टि से शरीर का ह्रास होता है, बुद्धि का ह्रास होता है, स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, वाक शक्ति का ह्रास होता है, तो पर जो आध्यात्मिक साक्षात्कार जो है वो व्यक्ति के पास रहते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति महत्वपूर्ण है, और अगर आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल है तो भक्त चाहता है कि काफी समय तक जी ले ताकि और प्रगति कर सके, और सेवा कर सके, और शुद्धिकरण कर सके। पर अगर उसकी संभावना नहीं है तो सिर्फ जीने के लिए लंबा जीना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। तभी गजेंद्र सोचा है कि मेरे जो परिस्थिति है वह क्या है, भौतिकवादी है, हाथियों के बीच में जी रहे हैं, और राजा है तो राजा तो बहुत ऐश्वर्य है, बहुत ही वाली परिस्थिति है, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में पुनः जाऊंगा मैं तो फिर क्या मिलने वाला है मुझे, पुनः भौतिक चेतना में मैं फंस जाऊंगा, तो इसलिए बेहतर है कि मैं उस परिस्थिति में पुनः न जाऊं। और इस भाव से कह रहे हैं कि जी विषय ना हम इहा प्रभो, मैं पुनः जीना नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ, कृपया मेरे जीवन बख्शने से महत्वपूर्ण है कि आप मेरे अज्ञान करना चाहते। लोकस्य आवरण, आवरण जो करता है हमारी चेतना का, उस आवरण का आप नाश कर दो। और यह एक बहुत ही महान प्रार्थना है, यह आसान प्रार्थना नहीं है। तो हमारे स्कॉन के एक वर्ष सन्यासी थे नर्मदा महाराज, जब उनको पार्किंसन्स हो गया तो हाथ नहीं चला, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो फिर वृंदावन में चले गए और वृंदावन में उन्होंने प्राय व्रत ग्रहण कर लिया। प्राय व्रत मतलब क्या, व्यक्ति स्वयं ही खाना पीना छोड़ देता है। तो अभी भक्ता बोल रहे थे कि आपके शरीर को बहुत परेशान कर, थोड़ा खा लो। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर ये शरीर से मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता तो इस शरीर का पालन मैं क्यों करूंगा। ये बहुत ही ऊंची चेतना है, ये सबके लिए जरूरी नहीं है, सबके संभव भी नहीं है, पर ये भाव है भक्त का कि हम शरीर को सिर्फ शरीर के पालन के लिए पालन नहीं कर रहे, और शरीर का उद्देश्य कि भगवान की सेवा करें। इसलिए अगर भगवान की सेवा का मौका है तो जरूर हमें शरीर का संरक्षण करना चाहिए, शरीर का शरीर के लिए जो जरूरी है करना चाहिए, पर वही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करना। तो अभी यह एक भाव है, कैसे शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान पे एकाग्र रहता है, जीवन के अंतिम उद्देश्य एकाग्र रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भले ही हम शुद्ध भक्त न हो, इवन इफ वी आर नॉट प्योर डिवोटीज, वी कैन बी पोटेंशियल। शुद्ध भक्त मतलब भगवान के अलावा कोई इच्छा नहीं है। पोटेंशियल प्योर डिवोटीज मतलब जो शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, मतलब वो भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य बना रहे थे। अभी तक भगवान ही सर्वस्व है, ये साक्षात्कार नहीं हुआ है, पर बौद्धिक स्तर पर तो समझ गए भगवान को हमारे जीवन का परम उद्देश्य बना रहे थे। तो वो स्तर पर हम कैसे आते हैं, जब हम श्रवण करते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं भगवत संदर्भ में कि जो महान भक्त है वो आध्यात्मिक स्तर पे रहते हैं उनके प्रीति के कारण, उनको भगवान से आ सकती है तो उस प्रीति से अपने आप वो आध्यात्मिक स्तर पे रहते हैं। पर जो साधक है वो कैसे आध्यात्मिक स्तर पे रहेंगे, बोलते हैं उनकी प्रीति उतनी होती है, प्रीति पर उतनी नहीं रहती, तो वो अपने बुद्धि के द्वारा आध्यात्मिक स्तर पे रहते हैं। बुद्धि से समझना है कि मन बोलेगा ये करो, दुनिया बोलेगी ये करो, नहीं, बुद्धि से समझता है। तो जितना हम श्रवण करते हैं उतना हमारी बुद्धि सुदृढ़ होती है, और जितनी बुद्धि सुदृढ़ होती है उतनी हमारी भक्ति करने की, भक्ति में लगने का जो दृढ़ संकल्प है बढ़ जाता है। बुद्धि और भक्ति एक नहीं है, वो अलग है, पर बुद्धि और सिर्फ बुद्धि की वृद्धि से भक्ति में वृद्धि होगी जरूरी नहीं है, पर बुद्धि की वृद्धि से, हाँ, बुद्धि की पुष्टि से हमारे भक्ति करने का संकल्प बढ़ जाता है। जैसे कोई छोटा बालक है वह दवाई लेना जाता है, पर जब दवाई देते तो माँ वो रोने लगता है। अगर माँ बहुत भावुक हो जाएगी, ओ मेरे बच्चे को रोते हुए देख सकती हूँ मैं, बोलती है ठीक है तुमको दवाई लेने मत लो, तो क्या होगा, अभी तभी तो बच्चा रोना बंद कर देगा और बाद में बीमारी बढ़ जाएगी तो और रोने वाला है। तो तभी माँ को भावुक नहीं होना, माँ को अपनी बुद्धि से काम लेना है और बच्चे को जरूरी है करके दवाई देना ही है। तो हमारा जो मन जो है वो एक अनजान बालक के समान है, हमारी बुद्धि जो है वो हमारे माँ के समान हो जाए। और भले ही मन को कभी भक्ति अच्छी लगे, भक्ति अच्छी लगे, पर बुद्धि के स्तर पर हम वो भक्ति, हरिनाम जो है, भगवान का स्मरण है, भगवान की सेवा है, ये दवाई है, हमको कोई दवाई देते रहते हैं। तो इसीलिए बुद्धि की पुष्टि बहुत जरूरी। और साथ साथ यहाँ पे एक और चीज हमें समझनी है कि अभी गजेंद्र जब आए भगवान के पास तो वो आर्तो, वो दुख में आए थे, वो पीड़ा में आए थे। तो वो जब आए थे तो शुद्ध भक्ति के भाव से नहीं आए थे, और जब शुद्ध भक्ति के भाव से नहीं आए थे तो भगवान ने उनको ठुकराया नहीं। भगवान ने उनको स्वीकार किया, उन्होंने प्रार्थना की। अगर जब प्रार्थना करते रहे तो क्या होता है, प्रार्थना भी भगवान पर विचार करते हुए, जीवन के तत्व के बारे में विचार करते हुए उनका साक्षात्कार और बढ़ गया। और पहले तो आए थे वो कि वो मुझे मगरमच्छ से बचाओ इसके, पर बाद में क्या हो गया, वह उस स्तर पे आ गए हैं भगवान, मगरमच्छ से बचाओ या बचाओ फर्क नहीं पड़ता है, ये अज्ञान के मगरमच्छ से बचाओ। तो मतलब we cannot become pure devotees without becoming devotees। हम अपने आप शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, सबसे पहले हमें भक्त बनना है। और इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जीवन में या दूसरे किसी लोगों के जीवन में भौतिक समस्याएं आती है तो कभी कभी हम सोचेंगे अरे ये समस्या तो भौतिक है, ये तो समस्या भौतिक है, मुझे इसके बारे में भगवान से कुछ प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा, एक तरह से शुद्ध भक्त किसी भौतिक चीज के बारे में भगवान से कामना नहीं करते। पर अगर हमारे जीवन में कुछ भौतिक चीज भी हो, अगर वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे, तो वो हमारे हृदय पे बोझ के रूप में लेती है। और अगर हम उसके बारे में भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे हृदय से चले जाने वाले नहीं है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे हृदय का उतना जो भाग है वो भगवान से संबंधित नहीं होगा। हमें क्या है, हमारा हृदय भगवान को अर्पण करना है। पर अभी अभी की परिस्थिति में बहुत सी भौतिक चीजें हमारे महत्वपूर्ण है, वो हमारे हृदय में जगह ली बैठी है और वो हम निकाल नहीं सकते। अगर हमारी सेहत है, हमारी आर्थिक प्रगति है, हमारे परिवार वालों के कुछ रिश्तों में कुछ समस्या आ रही है, उनकी कुछ तबियत खराब है, तो ये सब चीजें हैं, ये हमारे हृदय में जगह ले लेती है। तो शुद्ध भक्ति का क्या मतलब है, क्या यह मतलब है कि ये सब चीजें भौतिक है, इसके बारे में मैं भगवान से बात ही नहीं करूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं केवल शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा। हाँ, शुद्ध भक्ति के लिए जरूर प्रार्थना करनी है, पर हमें समझना है भक्ति मतलब क्या है, हमें भगवान से संबंध जोड़ना है। और संबंध जोड़ना है मतलब कि हमारे हृदय को भगवान के पास ले जाना है। तो अभी भक्त ने अगर फैसला कर लिया है कि मेरा जीवन भगवान के लिए समर्पित है तो फिर भौतिक और आध्यात्मिक में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, फर्क है कि हमें आध्यात्मिक चीजों के लिए समय देना है, पर उसके विपरीत हमारा भौतिक जीवन भी भगवान के लिए ही है। तो इसीलिए हमें वे एक at an analytical level we separate between the material and the spiritual, but at a practical level we just connect our whole life with Krishna. ek vishleshan ke taur par hum kya karte hain ki ye bahut ye itna samay mere aadhyatmik jeevan mein lene wala, main subah bhagavatam sunne jaunga, main check karunga, ye karunga, wo karunga, ye samay mein zarur mere bhagwan ko aadhyatmik jeevan mein lene wala, aur baaki baad mein mujhe mera naukri hai, mujhe parivar hai, wo sab dekhna। तो इस तरह से विश्लेषण के स्तर पे हम भौतिक और आध्यात्मिक का भेद करते हैं, पर प्रायोगिक स्तर पे हम कार्य कर रहे हैं तो हमें हर बार अगर हम सोचते बैठेंगे भौतिक है क्यों कर रहा हूं, तो क्या होगा, वास्तव में आध्यात्मिक क्या है, भौतिक क्या है। जब अगर हम भगवान की सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं तो वो आध्यात्मिक है। अगर हम परिवार वालों की देखभाल कर रहे हैं और वो इस भाव से कर रहे हैं कि ये भगवान की योजना से मेरे जीवन में है और उनकी देखभाल करना, उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी को संभालना, यह मैं भगवान की सेवा के रूप में कर रहा हूं, तो वह भी आध्यात्मिक हो जाता है। अब अगर मैं वो ही करूंगा और भक्ति करूंगा ही नहीं तो वो आध्यात्मिक चेतना केवल एक भावुकता रहेगी, वास्तव में वो रहेगी नहीं। तो इसीलिए डायरेक्टली आध्यात्मिक कार्य करना जरूरी है, पर मतलब मंदिर जाना, श्रवण करना, भक्तों का संग करना, यह सब जरूरी है, भगवान के रूप में पूजा करना, पर यह करने के हम कर लिया है, यह इसके लिए समय हमने निर्धारित कर लिया और उस समय में हम वो पूरे अच्छे तरह से कर रहे हो, तो उसके बाद में हर पल में यार ये आध्यात्मिक है, ये बहुत है, सोचने की जरूरत नहीं है। हमें सेवा भाव से जो भी करना है वो करना है। अगर मान लीजिए हम कुछ प्रवचन सुन रहे हैं, अब प्रवचन में कोई जोक बोलता है, तो अगर वो जोक में हंसने के पहले सोचते अरे मैं भगवान की पसंद के लिए हंस रहा हूँ, खुद की पसंद के लिए हंस रहा हूँ, क्या हो जाएगा वो, that will become paralysis by analysis। वो जो है
नहीं भगवान की कथा में कोई जोक हो रहा है तो उसमें हंसता है, हंसता कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए व्यवहारिक रूप से जो हम कार्य कर रहे हैं, अगर हर वक्त करेंगे भौतिक आध्यात्मिक है तो क्या होगा, हम जो भौतिक कार्य है हमारे पूरी शक्ति से नहीं करेंगे, और जब पूरी शक्ति से नहीं करेंगे कई बार हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां जो होती है वो तो करनी पड़ती ही है, और फिर अगर हम पूरे ध्यान से नहीं करते हैं तो बाद में उसको और समझ नहीं आता है। फिर विद्यार्थी बोलते हैं अरे ये तो शब्द पढ़ाई तो भौतिक है, मुझे नहीं करनी पड़ती है। पर ठीक है, जब एग्जाम आता है तो पढ़ाई करनी पड़ती है, फेल हो गए तो फिर और पढ़ाई करनी पड़ती है, और समझ आता है उसमें। तो इसलिए क्या है कि प्रायोगिक स्तर पर हमें सेवा भाव अनुष्ठित करना है। मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा नाम बड़ा हो जाए, पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो आर्थिक संतुलन अच्छा हो जाएगा, आर्थिक स्थिति, फिर मैं ध्यान पूर्वक भगवान से भक्ति कर सकता। अभी भी मैं भक्ति करूंगा पर तभी चिंता थोड़ी कम होगी और अच्छे से भक्ति कर सकता। तो अगर हमारा उद्देश्य भगवान के करीब जाना है तो वो सेवा भाव है, तो हर समय हमें ये भौतिक है या आध्यात्मिक है ऐसा भेद करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ भगवान को, हमें सिर्फ खुद को भगवान से संबंधित करना। तो अगर कोई भौतिक चीजें हमारे जीवन में परेशान कर रही है तो उसके बारे में हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, पर क्या है, हम हमारी भक्ति उस प्रार्थना के पूर्ति पर निर्भर नहीं करेंगे। मतलब अगर हमारे परिवार वाले उनकी तबीयत खराब हो गई है तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि तबीयत अच्छी हो जाए, वो अच्छे स्वास्थ्य में रहे, पर ऐसे नहीं है कि अगर हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी तो आप बोलेंगे आपने मेरी प्रार्थना पूरी नहीं कि मैं आपकी भक्ति क्यों छोड़ूंगा। तो अगर हम हमारी भक्ति हमारे भौतिक परिस्थितियों हमारे परिस्थितियों पर निर्भर कर देते हैं तो फिर वो क्या होगा, वो अस्थायी भक्ति हो जाएगी और अनस्टेडी भक्ति हो जाएगी। पर हमारे भौतिक स्थितियों से प्रभाव तो हम पे पड़ने ही वाला है, तो इसलिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा जीवन भगवान से संबंधित करना है और सेवा भाव से करना है। तो यहाँ पे गजेंद्र पहले एक भौतिक पीड़ा में भगवान के पास आए, पर भगवान के पास आने के बाद ही उनका शुद्धिकरण हुआ। जैसे कि हम देखते हैं ध्रुव महाराज की कामना वैसी है, पहले तो भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए आए पर भक्ति की वृद्धि से भी शुद्ध हो गए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार तीव्रेन भक्ति योगे न जीवित पुरुषम परम। भले ही व्यक्ति काम वासना से बुरा हो, काम वासना से मुक्त हो, उनको भक्ति ही प्रेरित करना है। और इसलिए अधिकांश लोग जब मंदिर में आते हैं तो उनको कुछ समस्या आती नहीं होती है, उसके कारण आते हैं। भगवद गीता में बताते हैं भगवान की चार प्रकार के लोगों के पास आते हैं, जो दुखी है, जो जिज्ञासु है, जो ज्ञानी है और जो पैसा चाहते हैं। तो आजकल कलयुग में तो चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, जो दुखी है, जो दुखी है, जो दुखी है और जो दुखी है। दुखी प्रधान कारण है, इसके कारण लोग भगवान के पास आते हैं। तो अभी ज्ञानी लोग भगवान बहुत कम है, मनुष्यानाम सहस्रेषु। तो मैं जब तक हमारा से भी मिला था, हमसे बात कर रहा था, क्योंकि जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो बोलते हैं कि मैं 100 लोगों से बात करता हूँ उनमें से 99 लोग जो उनसे बात करते हैं उनकी भौतिक समस्या के बारे में करते हैं, तत्व ज्ञान के बारे में कोई प्रश्न मुझे तो आता ही नहीं उनसे। तो बोले वही मेरी सेवा है, मैं चाहूँ प्रवचन में भगवान के बारे में बात करता हूँ पर व्यवहारिक स्तर पर अगर लोगों की मदद करनी है तो उनकी जो समस्या है उसके बारे में बात करनी होती है। तो वो भक्ति कर रहे हैं तो उसे वो समस्याओं से धीरे धीरे परे चल जाएगी। पर क्या है, समाज में जो लोग हैं वो दुखी ही है, और जब हम प्रचार करते हैं बहुत पहले ही अगर हम शुद्ध भक्ति पर जोर दे देंगे तो क्या लोग लगेंगे मेरे लिए नहीं होगा, मुझे मेरे भौतिक जीवन संभालना है, यहाँ से मुझे कोई मदद नहीं मिलने वाली, मैं कहीं और चला जाता नहीं। हमें जब हम लोगों को मदद करनी है, जब लोगों को प्रेरणा देनी है तो हम ऐसे नहीं कह सकते मैं तुम्हारे आत्मा का कल्याण करता हूँ और तुम्हारे शरीर की परवाह नहीं करता। We treat the person as one and complete being। वो व्यक्ति इस समय शरीर और आत्मा का समन्वय है, तो व्यक्ति को शारीरिक स्तर पर कोई समस्या है तो उसकी मदद, अगर हम मदद करने की क्षमता है हमें तो जरूर मदद कर सकते हैं। वह भी हम केवल किस भाव से कर रहे हैं, वो एक सेवा भाव से कर रहे हैं। ये व्यक्ति आत्मा है, ये भगवान में भगवान के
और आकर्षित हो रहा है थोड़ा थोड़ा,
तो उनको मैं और नोट करता हूँ। तो इस तरह से जब हम ये भाव रखते हैं कि हम सबसे पहले हमें भक्ति में लगना है, फिर शुद्ध भक्ति में, शुद्ध भक्ति, और लोग जब नए आते हैं तो किसी न किसी तरह से वो भक्ति में लगना चाहिए। और तो इसी तरह यही भाव जो रूप गोस्वामी भक्ति श्याम सुंदर में दिखाते हैं। एक तरह से वो कहता है शुद्ध भक्ति मतलब क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। वो कहते हैं सब कामनाओं से मुक्त रहो, ज्ञान और कर्म से मुक्त रहो, और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का चिंतन, यह शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हो। पर वही रूप गोस्वामी उसी ग्रंथ में जो हम साधक है, साधकों के लिए क्या बोलते हैं वो ऑपरेशनल प्रिंसिपल, जो व्यवहारिक स्तर पे जो मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन का मतलब तो बोलते हैं ये न केन प्रकार मन कृष्ण देश, किसी न किसी पद्धति से आप मन भगवान में लगाओ, किसी न किसी पद्धति से, मतलब पहले से ही शुद्ध भक्ति पे ज्यादा जोर देंगे, बोलेंगे भगवान मुझे कुछ इस भगवान में से कुछ भक्ति जगह से बाहर ले जाएंगे, यहाँ पे कुछ मदद करने वाले नहीं है, छोड़ो मुझे यहाँ पे मदद करने कुछ और योजना बनानी पड़ेगी, तो भक्ति में बाद में करता हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए, जहाँ हमें लोगों को जिस भी स्तर पर है, जिस भी हेतु से क्यों ना हो, उनको भगवान की ओर लाने में मदद करनी चाहिए। और भक्ति को भी हमें इस तरह से प्रेजेंट करना है, इस तरह से भक्ति करते तो ज्ञान बताना है कि लोग जिस स्तर पर है उस स्तर पर भी आकर्षित हो जाए। प्रभुपाद जी को एक बार भक्त मिलने आए, वो बोले थे कि मैं वो शराब छोड़ नहीं पा रहे, तो प्रभुपाद जी ने उनको जवाब दिया और वो जवाब मैंने अपने ग्रंथ है ऑन द वे टू कृष्णा उसमें भी लिखा, लेकिन अगर आप शराब छोड़ नहीं पाते हो तो आप सोचो जो शराब का स्वाद है जिसमें आसक्त इतना आकर्षित कर रहा है, वो शराब का स्वाद वास्तव में कृष्ण है। और प्रभुपाद जी ने कहा रसो हम अपसु कौन थे, वो कहते हैं कि सब रसों में स्वाद मैं हूँ, तो शराब का स्वाद भी मैं ही हूँ। और जब तुम शराब पीते हो तो तुम याद करो कृष्ण का स्मरण करो, ये जो आकर्षक स्वाद है ये वास्तव में कृष्ण का स्वाद है। तो प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे कि तुम शराब, अब प्रभुपाद जी कहते हैं अगर इस तरह से तुम कृष्ण का स्मरण करोगे तो तुम एक दिन महान भक्त बन जाओगे। वो ये नहीं कह रहे कि शराब पीने से महान भक्त बन जाओगे, वो शराब तो छोड़ नहीं पाए, पर वो अगर उस समय भी अगर भगवान का स्मरण कर पाता है कि ये क्या है जो मुझे इतना आकर्षित कर रहा है, वास्तव में भगवान का ही काम है। यद्यत् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेवा तत्तदेवावगच्छत्वं मुदेजोऽहं च सम्भवः, कि जो भी दुनिया में आकर्षित चीज है वह उसके आकर्षित को कहां से आता है, वो भगवान का ही काम है। तो इसलिए वास्तव में सब लोग हम कहेंगे ये तो शुद्ध भक्त नहीं है, ये तो सकाम भक्त है, ये तो अभक्त है, ये नास्तिक है, ये तो भौतिकवादी है, पर एक तरह से सब लोग भगवान की ओर आकर्षित है, भगवान की ही ओर आकर्षित है। अगर कोई एक कोई सुपरस्टार क्रिकेटर का फैन हो गया है, अभी वो क्रिकेटर का जो क्रिकेटिंग एबिलिटी है, उसका जो क्रिकेट खेलने की क्षमता है, वो कहाँ से आएगी, वो भगवान ने उसको दी है, भगवान की विभूति है जो उससे जागृत हो रही है। पर क्या है ये उसका संबंध वो भगवान से देख नहीं पा रहे, तो भगवान प्रभुपाद क्या बता रहे उसको कि तुम ही संबंध देखो। वो ये नहीं कह रहे तुम शराब पीते रहो, कह रहे अगर शराब पीना छोड़ नहीं सकते तो शराब पीते हुए भी तुम भगवान का स्मरण करो, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे भगवान के स्मरण से शुद्धि कम हो जाएगा, भगवान के स्मरण से आकर्षण बढ़ता है, और इस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते। We can become conscious of Krishna even in the things that make us unconscious of Krishna. जिन चीजों से हम कृष्ण की विस्मृति हो जाती है, किसी को पैसे की बहुत आकर्षण होता है, किसी को सुंदर रूप जो होता है उससे बहुत आकर्षण होता है, किसी से मान, किसी को मान सम्मान से बहुत आकर्षण होता है, अलग अलग चीजें सबको आकर्षण होता है, तो वो चीजों जब हमारे सामने आती है तो भगवान की विस्मृति हो जाती है। पर अगर हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे ये चीज में क्या है, वो आकर्षक है, क्यों मुझे इतना आकर्षित कर रही है, वास्तव में इसमें भगवान का एक अंश है, भगवान की महिमा का एक अंश है, वही आकर्षित कर रहा है। तो इस तरह से अगर उसमें भी हम भगवान का स्मरण करेंगे तो धीरे धीरे उसके द्वारा भक्ति में प्रगति करेंगे। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि स्वाय हिप्पी आया था, ड्रग लेते थे, उन्होंने पूछा स्वामी जी वैकुंठ का आनंद कैसे है, कुछ बता। तो प्रभुपाद बोला कसं तर चिंतामणी प्रकर सद्म शुकल वृक्ष ब्रह्मसमाधि शोक का सकते पर उसको क्या समझने वाला है वो कशा कर रहा है प्रभुपाद जी ने क्या बताया वैकुंठ इज लाइक एन ओशन ऑफ एलएसडी वैकुंठ मतलब क्या है ये ड्रग्स के एक सागर के समान है आई वांट टू गो देयर बढ़िया मुझे वहां पे जाना है तो प्रभुपाद जी ने क्या किया यहाँ पे इस तरह से प्रदर्शित किया भक्ति के तत्व ज्ञान को कि वो व्यक्ति आकर्षित हो सके तो इसलिए शुद्ध भक्ति हमारा उद्देश्य है पर शुद्ध भक्ति तक पहुंचना हम हमें ऐसे नहीं दिखाते कि इतना मुश्किल है तुम ये नहीं कर सकते तुम दफा हो यहां से जैसे भी हो हम भक्ति चालू कीजिए और जैसे ही भक्ति चालू कर देंगे धीरे धीरे भक्ति में वो शक्ति है कि व्यक्ति को शुद्ध कर देगी और धीरे धीरे वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाएगा तो यही भाव श्री रूपा जी का था जब उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और वही भाव हमें हमारे जीवन भक्ति को अमल करते हुए और भक्ति दूसरों से वितरित करते दूसरों वितरित करते हुए यही भाव हमें रखना है तो सारांश में आज चर्चा की किस तरह से जब हम भगवान की यहाँ पे गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे जीवन मत जीवन नहीं बचाना है मुझे मुझे आप अज्ञान से मुक्त कर दीजिए और हम भक्ति कहते हैं कि जो अज्ञान है वो काल के प्रवाह से नहीं चला जाता है तो उसके बाद चर्चा की कैसे काल सब कुछ नाश कर देता है और जो चीजें बड़ी बड़ी हमें दिखती है उससे हमको संरक्षण और संरक्षण का भाव मिलता है हमारे काम जब पिंड टावर गिर गया तो लोग बहुत भयभीत हो गए चिंतित हो गए कि जो स्थायी होने का जो मोह था वो नष्ट हो गया तो वास्तव में कुछ भी चीज स्थायी नहीं हो रही पर जो हमारी इच्छाएं है सब कुछ काल सबका नाश करता है पर हमारी इच्छाएं हमारा आसक्तियां है वो नष्ट नहीं होती उल्टी जो आदतें है काफी जगह जाती है बढ़ जाती है तो इसीलिए हमें खुद संघर्ष करके फैसला करना है मुझे मेरी आसक्तियों को त्यागना है और इस संबंध में चर्चा की जब पहली संस्कृति में बताया गया है पहले ब्रह्मचारी फिर गृहस्थ फिर मानव संन्यास इसमें ये भाव है कि जब हम वृद्ध होने लगते हैं जैसे कालावधि के गुजरने के बाद जो वैराग्य है वो और आसान होता है पर फिर भी वो स्वाभाविक नहीं होता है वो आसान इसलिए होता है कि हमें अनुभव होता है कि दुनिया में कुछ भी प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना होता है ये भी अनुभव होता है ये साक्षात्कार होता है कि ये दुनिया में जो चीजें है वो इतनी कुछ बड़ी नहीं है पहले लगता है कि बहुत आकर्षक है प्रभाव पता चलता है इतनी बड़ी नहीं और तीसरा है कि हमारे शरीर की शक्ति जो है वो कम होने लगती है और इसलिए तभी वैराग्य त्यागना आसान हो जाता है पर दुर्भाग्यवश आजकल का समाज ऐसा है आज की संस्कृति ऐसी है कि जो वृद्ध लोग हैं उनको कई इंडस्ट्रीज है कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट है उनको भी टारगेट करते हैं और उनको अब मोह भी ग्रस्त करते हैं तो जो वृद्धावस्था चिंता मग्न था तो कलयुग में से आ गया है अभी के समय कि वृद्धों को भी भौतिक आसक्ति में बंधा रखा गया वृद्धावस्था भी द्रोणी मग्न है वृद्धावस्था भी क्रीड़ा सप्तम है इस तरह से मोह बहुत बढ़ गया इसीलिए हमें फैसला करना है कि मुझे अभी बहुत हो गया मुझे त्यागना है और लंबी आयु होनी चाहिए इसलिए कि हम भक्ति करें और शुद्धिकरण कर सके सिर्फ लंबी आयु जीने से अपने आप शुद्धिकरण नहीं होता है भक्ति में भी बहुत समय रहने से अपने आप शुद्धिकरण नहीं होता है हमें भक्ति प्रामाणिकता से करने से ही हमारा शुद्धिकरण होता है तो अगर यहाँ पर विजय सोच रहे हैं कि अगर मैं भी इस मतलब से मुख भी हो गया तो पुनः मेरे जो परिवार वाले है मेरा जो समाज है पूरा भौतिक वाले उसे भी चला जाऊंगा तो फिर मैं पुनः मोह पर जाऊंगा इसलिए कह रहे हैं कि मुझे पुनः ये जीवन नहीं चाहिए मुझे अज्ञान से मुक्ति चाहिए तो हमें शरीर का पालन करना है तो इसलिए करना है कि हम भगवान की सेवा में लगा सके तो ये शुद्ध भक्त भले ही हम अभी ना हो हम शुद्ध भक्ति की आकांक्षा कर सकते हैं और उसके लिए हमें बुद्धि के स्तर पर कार्य करना है स्वाभाविकता से भगवान के आकर्षण हमारा उतना स्थायी नहीं रहेगा जितना हम शास्त्रों का अध्ययन श्रवण करते हैं बुद्धि पुष्ट हो जाती है तो भक्ति में लगने का दृढ़ संकल्प हो जाता है जैसे हमारा मन एक छोटे अनजान या नादान बालक के समान है पर हमारी बुद्धि है वो एक परिपक्व माता के समान है और फिर वो माता को अपने बच्चे को दवाई लेने को
दवाई देगी उसको अच्छी तरह से। वैसे ही हमारी बुद्धि सुदृढ़ होती है तो मन बोलेगा नहीं करना है हमें, फिर भी हम दृढ़ संकल्प से भक्ति में लग जाएंगे। और जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हम शुद्ध भक्ति हमारी आकांक्षा है, पर साथ साथ हमें जिस भी स्तर पे हो हमें भगवान से संबंध जोड़ना है। गजेंद्र शुरुआत से शुद्ध भक्त नहीं थे, उनको पीड़ा के कारण आए थे और उनको तो भगवान ने ठुकराया नहीं, स्वीकार किया। तो इसीलिए अगर हमारे जीवन में कुछ पीड़ा है तो भौतिक स्तर पर भी पीड़ा क्यों ना हो, ऐसे ही सोचना चाहिए हमें कि मैं इसके बारे में भगवान से कुछ प्रार्थना नहीं करूँ क्योंकि ये भौतिक है। हमें भक्ति मतलब क्या है, भगवान से संबंध जोड़ना है। और अगर कुछ चीज हमारे हृदय में बहुत बोझा बना करके तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कृपया आगे समस्या को सुलझा दो, पर हम वो समस्या के हल पर हमारी भक्ति को निर्भर नहीं करते। समस्या हल हो या ना हो फिर भी हम भगवान की भक्ति जारी रखेंगे। प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा हृदय भी भगवान से और संबंध में आगे बढ़ेगा। और हम शुद्ध भक्त नहीं, भक्त बने बिना, भक्त बने बिना शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। भक्त मतलब संबंध जोड़ना। तो शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि बिना किसी कामना के भगवान की भक्ति करना। पर हमारे स्तर पर गोस्वामी बताते हैं ये नकी न पकड़, किसी न किसी कारण से आप भक्ति में लग जाओ। जब नए लोग आते हैं अगर उनको लगेगा कि यहाँ सिर्फ शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी तो बोलेंगे यह हमारे बस की बात नहीं है। पर हाँ, शुद्ध भक्ति हमारा उद्देश्य है, हम उसके बारे में बताते हैं। पर व्यावहारिक स्तर पर जो भी जरूरी है लोगों को भक्तों भक्ति में प्रेरित करने के लिए सुविधा देने के लिए हम देने का प्रयास करते हैं। और अंत में देखा कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें ज्यादा हर समय अरे ये भौतिक है या आध्यात्मिक ऐसे भेद नहीं करना है। हमें समय के तौर पे आध्यात्मिक जीवन के लिए समय देना है पड़ेगा, तो उसके बाद में हर चीज जो है हमारे जीवन की अगर हम सेवा भाव से वो करते हैं तो फिर वो भक्ति का एक अंग हो जाती है। और उस भाव से अगर हम करेंगे तो हमारे हम नकारात्मक तो कोई भावना नहीं रहेगी और हम सब चीज हमारे आध्यात्मिक वृद्धि में मदद कर सकते हैं, सब चीजें आध्यात्मिक वृद्धि में मदद होगी हमारी। और जब हम भक्ति कर रहे हैं तो उस समय हमें सिर्फ मुझे भगवान से संबंधित कैसे रहना है और दूसरों को भगवान से संबंधित कैसे कराना है वो भाव करना है। तो प्रभुपाद जी बड़े दक्ष थे इसमें, जैसे उन्होंने आपको किस आसक्ति से भगवान दूर भी जा रहे हैं तो उस आसक्ति के आकर्षण भगवान है ये समझ के भगवान का स्मरण करो। शराब पीने से शराब नहीं छोड़ पाते तो कम से कम तभी शराब का स्वाद भगवान से आ रहा है सोचो। ड्रग्स बड़ा आकर्षण है तो सोचो कि ड्रग्स में जो आनंद है उसका एक सागर समान आनंद भगवान की भक्ति में भगवत धाम में। इस तरह से जब हम भक्ति को लोगों को आकर्षित पद्धति से प्रस्तुत करते हैं तो हम वो भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई सवाल है?
आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा को काटा जा सकता है, भगवान उसको खा सकते हैं, ले सकते हैं, खा सकते हैं।
तो आत्मा को काटा नहीं जा सकता है तो क्या भगवान आत्मा को काट सकते हैं? देखिए भगवान के लिए कुछ भी संभव है। सो कृष्णा कैन डू एनीथिंग बट कृष्णा इज नॉट विंसिकल, कृष्णा इज नॉट आर्बिट्ररी। भगवान कुछ भी करने की क्षमता रख सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने सृष्टि का नियम बनाया है वह उसका कभी भी कैसे भी वो उल्लंघन करते हैं। तो हर एक चीज का अपना अपना स्वभाव होता है तो स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। अभी कभी कभी जैसे अगर कोई हम अगर मैं ये वस्तु को छोड़ देता हूँ नीचे गिर जाता, ये भगवान की योजना से गुरुत्वाकर्षण का नियम है जिससे कोई चीज गिरती है। वे चाहे तो भगवान उसको ऊपर रख सकते हैं, तो गोवर्धन नीचे गिरा नहीं, भगवान ने जब अपने उंगली से उसको ऊपर उठा कर दिया। तो जो निसर्ग के नियम है जो भक्ति नियम पर आयोजितता है उसको भगवान अपने शक्ति से उसको रोक भी सकते हैं, पर भगवान ऐसे मनमानी की भावना नहीं करते, उद्देश्य होगा। तो आप भक्तों को साक्षात करना था इसीलिए उन्होंने
वो जो गुरुत्वाकर्षण नदी उसको सस्पेंड कर दिया। तो संभावना भगवान की है पर वो कोई उद्देश्य बात करते हैं। तो भी आत्मा जो अनश्वर है, शास्थाई है, उसको कोई काटा नहीं जा सकता है। ये आत्मा का स्वभाव है, भगवान की योजना से ही बनाया है। और वो स्वभाव को उल्लंघित करने का कोई कारण नहीं है भगवान, तो इसीलिए वो भगवान नहीं करते। पर इसके साथ साथ हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य बताते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु के कई पार्षद, वो गौर लीला में भी है और कृष्ण लीला में भी है, तो वही एक पार्षद वह गौर लीला में भी मौजूद रहता है। तो अगर कोई मुक्त हो जाता है भौतिक जगत से और आध्यात्मिक जगत में आता है और उनका अगर चैतन्य महाप्रभु से बहुत आकर्षण है और कृष्ण से बहुत आकर्षण, तो भगवान की इच्छा से वो शाश्वत काल में दोनों लीलाओं में सहभागी हो सकते। इस तरह से मतलब एक ही आत्मा दो लीलाओं में आ सकते हैं, मतलब उस तरह से हम कह सकते हैं कि आत्मा का विभाजन हो सकता है। पर ये विभाजन नहीं है, ये वास्तव में विस्तार है। तो अगर कोई लीला के लिए ऐसे करना जरूरी है तो भगवान कर सकते हैं, पर स्वाभाविक रूप से भगवान वैसे नहीं करते, उनकी क्षमता नहीं ऐसे नहीं है। पर भगवान की, भगवान ने जो योजना बनाई है उसको उल्लंघन करने की उनके लिए कोई जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच। कंठा श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।